जनाब वो खलासा साहब का मजमून इतनी जल्दी काहे को है। 23 फरवरी 2022 को रोजनामा दुनिया में शाया हुआ, आपके पेश खिदमत है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आखिर इमरान खान वजीर आजम बनने के अगले रोज ही पाकिस्तानी मीडिया के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन गए। वजीर आजम बने कुछ दिन बाद उन्होंने सहाफियों से पहली मुलाकात की थी तो उनके सर्द रवैये से अंदाजा हो गया था कि ये वो इमरान खान नहीं जिन्हें इस कब्र में मौजूद 2 दर्जन के करीब सहाफी और एंकर्स परसों से जानते थे। चंद रोज पहले तक इन सभी एंकर्स को बड़ी गाला से फोन करके रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो खान साहब का इंटरव्यू करें और एक दिन में खान साहब के 4-4 इंटरव्यूज भी चले। अब अचानक बहुत तब्दीली आ गई थी। खान साहब जब शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के साथ कमरे में दाखिल हुए तो सब सहाफी एहतरामन खड़े हो गए। उनका ख्याल था कि खान साहब उनसे हाथ मिलाएंगे और जवाबन वो उनसे मुबारकबाद वसूल करेंगे। शायद सहाफी नवाज शरीफ के आदि थे, वो हर एक के पास जाकर हाथ मिलाते और हाल व अहवाल पूछते थे, लेकिन इमरान खान बगैर किसी से हाथ मिलाए या बात किए सीधे सोफे पर जा बैठे और एंकर्स हैरान खड़े देखते रहे। उन्होंने सीधा काशिफ अब्बासी से कहा, हाँ काशिफ पूछो क्या पूछना है। काशिफ अब्बासी सवाल के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ इतना पूछ सके कि खान साहब लगता है आप हुकूमत के लिए तैयार ना थे। खान साहब बोले, जी तुम ठीक कह रहे हो, हम तैयार ना थे। किसी को पता नहीं क्या सूझी कि उसने खावर मानिका के बारे में सवाल पूछ लिया। खावर मानिका से पुलिस की गुस्ताखी के नाम पर पाक पतन की पूरी पुलिस तब्दील कर दी गई थी। इस सवाल पर खान साहब 1 घंटे साफियों से लड़ते ही रहे और वो इमरान खान जो मुस्कुरा कर मिलते थे मुसलसल गुस्सा कर रहे थे। वो मीटिंग खान साहब के गुस्से से शुरू होकर गुस्से पर खत्म हुई। वो जो मीडिया में उन्होंने बरसों से ताल्लुकात बनाए थे वो 2 घंटे की पहले मीटिंग में खराब हो गए। उनको पहले दिन से ही ये बता दिया गया था कि मीडिया का मक्कू ठपना है। जिन्होंने नई लाइन इमरान खान साहब को समझाई थी वो उनके दुश्मन थे। खान साहब को सबसे पहले मीडिया से लड़ाया गया, वो मीडिया जो उनकी ताकत था, अपनी जान बचाने के लिए अपोजिशन के कैंप में जा घुसा और जो अपोजिशन 30 साल खड़ी न हो सकती थी वो 30 माह में खड़ी हो गई है। इमरान खान भी उस वक्त तक मीडिया फ्रेंडली थे जब तक वो खुद वजीर आजम नहीं बन गए, और वो जिस दिन वजीर आजम बने तो ऐसे बदले कि अब उनका बस चले तो मीडिया को बंद कर दें, एंकर्स को जेलों में डाल दें। उनके नजदीक हर वो सहाफी जो उनसे अख्तिलाफ राय रखता है करप्ट है, जो उनकी 3 साल से जारी एक ही तकरीर पर वाह-वाह नहीं करता उसे मुखालिफों ने खरीद लिया है। हर हुक्मरान की तरह उन्हें भी लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं, कुदरत ने उनसे कोई बड़ा काम लेना है। भुट्टो साहब भी यही समझते थे कि उन जैसे बड़े लीडर को भला कौन फांसी दे सकता है। भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया बयान पढ़ें, उन्होंने कितने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए फिर भी फांसी। नवाज शरीफ भी यही समझ बैठे थे कि अगर वो दूसरी दफा वजीर आजम बने तो कुदरत उनसे कोई बड़ा काम लेना चाह रही है, लिहाजा उन्होंने खुद को अमीरुल मोमिनीन के दर्जे पर फाइज करने के लिए मसौदे कानून का सहारा लेने की कोशिश की। फिर वही नवाज शरीफ हथकड़ियों में जकड़े लांडी जेल जा पहुंचे। अमीरुल मोमिनीन बनने का मकसद भी शायद यही था कि किसी को नवाज शरीफ के फैसलों पर तनकीद की जरूरत ना हो और अगर कोई करे तो उसे वही सजा मिले जो एक अमीरुल मोमिनीन की गुस्ताखी करने वाले को मिलनी चाहिए। जो बंदा दूसरी दफा जमहूरी तरीके से वजीर आजम बना वो अब अमीर बनने के जुर्म का शिकार हो चुका था। लगता है भुट्टो और नवाज शरीफ के बाद अब इमरान खान तीसरे लीडर है जो खुद को ये यकीन दिलाए बैठे हैं कि उन्हें भी कुदरत ने किसी बड़े काम के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है, और ये बात उनके दिमाग में कुछ ऐसी बैठ गई है अब वो रास्ते में आने वाली हर रुकावट उबूर करने को तैयार हैं। उन्होंने रियासत मदीना का सहारा लिया ताकि अपने नागदीन के मुंह बंद कर सके। हैरत की बात यह है कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान, कोई भी अमीर उल मोमिनीन बनने का मैंडेट लेकर नहीं आया था। वो एक जमहूरी तरीके से आवाम के इश्यूज हल करने का मैंडेट लाए थे, लेकिन इन्हें अचानक एहसास हुआ कि जमहूरियत सिर्फ इस हद तक ठीक है कि उसके जरिए वजीर आजम बना जा सकता है, लेकिन इससे आगे जो एक वजीर आजम की जिम्मेदारियां हैं, पार्लियामेंट का एक जमहूरी कल्चर की जरूरियात हैं, वो उन पर अमल करने के लिए तैयार न थे। जिस मगरबी मुआशरे की जमहूरियत के फवायद गिनवाए जाते थे, वहाँ एक लीडर की ज़ाती ज़िंदगी इतनी शफाफ होनी चाहिए जितनी पब्लिक लाइफ। अगर किसी यूरोपी लीडर की ज़ाती या पब्लिक लाइफ में कोई स्कैंडल सामने आए तो वो ओहदे पर कायम नहीं रह सकते। वहाँ ये तसव्वुर है कि अगर आप अवाम के टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं तो फिर आपकी कोई ज़ाती लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ पर अवाम का हक है और वो पूछ गछ का पूरा हक रखते हैं। चुनाचे जब बिल क्लिंटन का अमरीकी पार्लियामेंट ने ट्रायल शुरू किया तो वो ये ना कह सके कि मोनिका लेविंस्की स्कैंडल या उनका झूठ बोलना उनका ज़ाती फेल था, उसका इनकी सदारत से कोई ताल्लुक ना था। इसी तरह आईएमएफ के सरबरा जो फ्रांस के अगले सदर बनने वाले थे, एक होटल में एक वेट्रेस के साथ ज्यादती करने के स्कैंडल में फंसे तो इन्हें भी कोई बहाना ना बनाने दिया गया और छुट्टी हो गई। हमारे यहाँ उसके बरक्स काम चल रहा है कि ये फुला लीडर का ज़ाती फेल है, उस पर बात ना करें। भाई अगर कोई लीडर अपनी ज़ाती जिंदगी में शफाफ नहीं तो पब्लिक लाइफ में कैसे फेयर हो सकता है? इसलिए यूरोपीय मुआशरे अपने लीडरों पर सख्ती करते हैं, वो उनकी प्राइवेट लाइफ के बहाने नहीं सुनते। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जो शायद शुमाली कोरिया, चीन या सऊदी अरब से मुतासर होकर मुतारिफ कराए गए हैं। मैं इसके हक में हूँ कि सोशल मीडिया को कंट्रोल होना चाहिए। मैं खुद सोशल मीडिया का शिकार रहा हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखा और बोला गया, लेकिन जो कवानीन अब बनाए गए हैं उनकी हिमायत इसलिए नहीं की जा सकती कि चलें मेरे मुखालिफीन इस तरह टंगे जाएंगे। हैरानी है कि जब उनकी हुकूमत खतरों में घिरी हुई है, अदम एतमाद तहरीक फाइनल होने वाली है, लॉन्ग मार्च की तैयारी है, उनके सियासी मुखालिफीन घेरा डाल चुके हैं, मुख्तदरा के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, महंगाई हाथ से निकल चुकी है, पेट्रोल 160 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुका है। इस वक्त इमरान खान को इन इश्यूज पे तवज्जो की जरूरत थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर सहाफियों और सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा सजाएं दिलवाने के लिए बेचैन हैं। शायद खान साहब को लगता है कि इन्हें पहला और आखिरी चांस मिला है, वो मुखालिफिन को जितना कुचल सकते हैं वो कुचल दें। जिस तरह खान साहब तेजी से दौड़ रहे हैं, लगता है उनके पास वक्त कम है। कभी यही जल्दी भुट्टो को थी, फिर नवाज शरीफ को थी कि मुखालिफिन का जीना हराम कर दें। आजकल वही जल्दी खान साहब पर सवार है।